سب خداون کے حضور جھک جائیں گے اور خداون سے حکمت اور دنائی مانگیں گے، کیونکہ اس کا کلام زندہ اور پاک اور ہر دھوداری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہماری نصیحت ہو، ہم اس سے تجربہ حاصل کریں، ہم اس سے زندگی کی راہوں کو جانیں، ہم اس سے خدا کی مرضی کو جانیں، اور اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے مخالف ابلیس کو سمجھیں کہ وہ چاہتا ہے، اور اس بائل کو جانے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری روحانی زندگی تباہ ہو۔ سو خداوند سے حکمت اور دنائی مانگیں گے، سب دعا کریں گے۔ خداوند ہم سب کو حکمت اور دنائی دے تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکے، تیرے کلام کو پڑھ سکے، تیرے کلام پر یقین کر سکے، تیرے کلام کو قبول کر سکیں، اور تیرے کلام کو دوسروں تک لے کر جائیں جیسے ابتدائی کلیسیا میں تیرے لوگوں نے کیا۔ خداوند ہم سب کو آج سنبھال، آج جو کچھ بھی ہم سیکھیں خداوند ہمیں اسے قبول کرنے کی، اسے خداوند یقین کرنے کی اس کلام پر، اور خداوند اس کلام پر عمل کرنے کی قوت اور طاقت دے۔ اور خداوند تیرا بیٹا خداوند یسوع مسیح نام عزت اور جلال پائے۔ ساری جماعت کو، آئے ہوئوں کو اور جو آ رہے ہیں، ہم سب کو بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ جیسا کہ کل ہم نے سیکھا اور دوسرے باب کو شروع کیا اور لفظ اور کو دیکھا تھا کہ لفظ اور ایسا فکرہ یا ایسا ذریعہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے سیکھا تھا کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جب جاتے ہیں، میں بازار گیا اور وہاں سے سبزی خریدی اور وہاں سے اپنے گھر آیا اور وہاں سے میں پھر گرجا گھر کو گیا یا گئی۔ سو یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول ہمیں سکھاتا ہے افسیوں 2 باب اس کی پہلی آیت میں، اور وہ کہتا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ ہمیں بائبل مقدس میں سے خدا کا کلام جو سکھاتا ہے وہ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اور کا تعلق کیا ہے؟ پچھلی ہی آیتوں سے ہے۔ جب ہم پچھلی 2 آیتیں دیکھتے ہیں، 22 اور 23 آیت، تو کس سے بات ہو رہی ہے؟ کلیسیا سے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ کلیسیا سے، جسے انگلش میں چرچ کہتے ہیں اور انگلش میں باڈی آف کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ مسیح کا بدن، اس سے بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں 22 آیت میں اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا، اور یہ اس کا بدن ہے اور اس کی ماموری، جو ہر طرح سے سب کا مامور کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایمانداروں سے بات ہو رہی ہے کہ تم ایک وقت میں کیا تھے؟ مردہ تھے۔ میں نے تمہیں تمہارے گناہوں اور خطاؤں اور غلطیوں سے زندہ کیا۔ تو یہاں پر پالوس رسول ہمیں سکھاتا ہے یہ، اور ہم نے کل یہ سیکھا تھا کہ لفظ اور اس نے، یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے، خدا باپ نے، خدا روح القدس نے، یسوع مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے تمہیں زندہ کیا۔ آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایماندار ہیں، ہم سب کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کے گناہ کے باعث کیا آئی؟ موت آئی۔ ایک نہیں، 2 قسم کی موتیں آئیں۔ کتنی قسم کی موتیں آئیں؟ 2 قسم کی۔ کیونکہ جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تو تب وہاں پر ذکر نہیں ملتا کہ ان کے لیے موت بنائی گئی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدا ان کو فرماتا ہے کہ اگر تم نے اس پھل میں سے کھایا تو ضرور مرا۔ یونانی زبان وہاں پر بتاتی ہے، عبرانی زبان، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے، अब्रानी जुबान बताती है कि जब खुदा ने कहा कि तू मरा, तो अब्रानी जुबान में इसका मतलब है कि जैसे ही तू रूहानी मौत मरेगा, रूहानी यानी मौत यानी खुदा से अलहदगी, वैसे ही जिस्मानी मौत आएगी। इसलिए इंसान के जिंदगी के वरे और साल जिसे कहते हैं वो कम ही होते गए। हम आदम को देखते हैं, वो 900 साल तक जीता रहा। उसके बाद उम्रें घटती गई जो जिस्मानी लिहाज से। और आखिर को मूसा नबी आकर जबूर में कहता है 70 वरे की 80 वरे की आखिर में फिर भी फना। हमारी जिंदगी क्या है? एक झटकी की मानद है। सुबह को उठने वाली गिरने वाली इस धुंध की मानद है कि अभी नजर आई और अभी खत्म होगी। तो यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल अपने जहन में वो बात रखता है जो रूह कुदस ने डाली, और वो कहता है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। मुर्दा यहां पर वो रूहानी मौत की बात कर रहा है कि बनी नू इंसान खुदावंद यीशु मसीह के बगैर मुर्दा है। इसके लिए मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पिरिचुअल डेथ, रूहानी मौत, रूहानी मुर्दगी, रूहानी तौर पर सुन हो जाना, रूहानी तौर पर कोई बात समझ नहीं आना, रूहानी तौर पर खुदा से दूर होना, जिसके लिए रोमियो 3:23 आयत में क्या लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, यानी कि दूर हो जाना, अलहदा हो जाना, जुदाई आ जाना। किसके बायस? गुनाह के बायस। तो मेरे साथ एक हवाला देखें, रोमियो 5:12। यहां पर भी खुदा का बंदा पालूस रसूल रोमियो के खत में इस बात को वाजिया करता है। रोमियो 5:12 कि किस सबाब से ये मौत आई? सिर्फ एक नाफरमानी के, और वो नाफरमानी किसने की? हमारे जद्दे अमजद। जद्दे अमजद के मतलब का मतलब है, इसका मतलब है हमारे बाप आदम ने और हवा ने, हमारे पहले बाप ने जिसे खुदा ने इस जमीन पर बनाया। तो 12वीं आयत में लिखा है पस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और मौत और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। यहां पर जिस्मानी मौत की नहीं बात हो रही, रूहानी मौत की। आदम के गुनाह के बायस बने हुए इंसान क्या फंस गया? रूहानी मौत में। रूहानी मौत बहुत ही भयानक जगह है, बहुत ही भयानक हालत है। ये वो हालत है जिसमें इंसान खुदा से दूर होता है, जिसमें इंसान क्या बन जाता है? इस मौजूदा दुनिया में रहते हुए शैतान का गुलाम, शैतान के हाथों बिका हुआ, शैतान के क्या कहते हैं कि शैतान के शहर का शहरी बन जाता है। ये रूहानी मौत बहुत ही खतरनाक हालत है। इसीलिए जब खुदा ने दुनिया पर नजर की तो इस रूहानी मौत का, जो इंसान आदम के सबब से इस दुनिया में आए, उसका क्या किया? इंतजाम किया। मेरे साथ एक और देखें हवाला, एक और हवाला देखें, रोमियो 6:23 कि गुनाह की मजदूरी क्या बनी? मौत, मौत, रूहानी मौत। और जब रूहानी मौत आती है तो जिस्मानी मौत जरूरी है, क्योंकि हम सब खाक हैं, खाक में मिल जाएंगे। और खुदा ने आदम को जब वो रूहानी तौर पर मरा तो उसके बाद ही कह दिया कि तू खाक है और फिर खाक में मिल जाएगा। इसलिए 6:23 क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुशखबरी क्या है? अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर सबके कानों को भली लगती है। लिखा है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। ये खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो मौत के बेड़े में सवार हैं। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है और उनकी रूहों के लिए ऐसा ठंडा पानी है जो मौत के बियाबान के जंगल में भटक रहे हैं। सो कलीसिया को खुदावन यीशु मसीह ने बनाया किस तरह, जब उन्होंने यीशु मसीह पर यकीन किया और उसका बदन बन गए, तो वहां पर खुदा का बंदा पालूस कहता है कि तुम एक दफा इस तरह के थे। हम सब की एक तरह से ऐसी ही हालत थी। और अगर आज किसी ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया या नहीं करता, उस पर शख्सी तौर पर यकीन नहीं रखता, तो उसकी हालत क्या है? मुर्दा है। हम जिस्मानी तौर पर तो सांस लेते हैं, जिस्मानी तौर पर तो सूंघ सकते हैं, जिस्मानी तौर पर तो आंखों से देख सकते हैं, जिस्मानी तौर पर कानों से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हिलजुल सकते हैं, लेकिन रूहानी क्या है? मुर्दगी है, मुर्दापन। जैसे जिस्मानी मुर्दा हिल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उन लोगों की ये हालत है जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, वो मुर्दा है। शैतान के गुलाम, शैतान के हाथों बिके हुए, इस दुनिया में खोए हुए, इस दुनिया की उन तमाम बातों में मगन। तो इसलिए पालूस रसूल कहता है कि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा को तरस आया, खुदा ने रहम किया, खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर की, किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। क्योंकि इंसान चाहता है कि कुछ करे कि वो खुदा तक पहुंचे। बाबुल का बुर्ज किसी को याद होगा? बाबुल का बुर्ज बनाया गया था ना, जहां पर जबानें बदल गई। उनकी ख्वाहिश क्या थी? कि आओ हम खुदा तक पहुंचे। शुरू ही से इंसान चाहता है खुदा तक पहुंचना, या खुदा से दूर रहकर खुदा को पसंद आना चाहता है, बजाय इसके के अपने आप को कमजोर मान लेना, इस बात को मान लेना कि हम इस काबिल नहीं कि अपने आप को बचा सकें। तो ये क्या है? वो हालत है उन लोगों की जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। इसलिए हर एक को इस बात का इकरार करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ही खुदावन है जो मुर्दों में से जी उठा है और जिसने हमें मौत की हालत से जिंदगी में दाखिल किया है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 22वीं आयत। पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 22वीं आयत। ये वो सब हवाला जात हैं जिसमें खुदावन खुदा कहता है कि तुम मुर्दा थे, और किस सबब से ये मौत आई। 22वीं आयत में लिखा है, पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 22वीं आयत। और जैसे आदम में सब मरते हैं, सबने गुनाह किया, किसने किया? तो वहां पहले आदम ने। जैसे आदम में सब मरते हैं, जो कोई आदम में है यानी कि आदम के साथ जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो उसमें सब मरेंगे, उसमें सब मौत का मजा चखेंगे, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। सब जिंदा किए जाएंगे जो मसीह में हैं। जिंदा यानी कि इफिसियों 2 बाब उसकी पहली आयत। और तुमको भी, क्या लिखा है? और उसने तुम्हें भी जिंदा किया। कलीसिया को खुदा यीशु मसीह ने जिंदा किया है ताकि जीती जान हो, कि जब अपने कसूरों गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। इसलिए हम कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है कि अगर हमारे रिश्तेदारों में, हमारे शहर में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा बेटा या बेटी है तो उसे बताने की जरूरत है उससे बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह है जो जिंदगी बख्शता है, क्योंकि कोई भी मसीही पैदा नहीं होता। मसीही बनने के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। इब्राहिम खुदा पर ईमान लेकर पैदा नहीं हुआ, खुदा ने उसे चुना और खुदा ने उसे कहा और उसने खुदा पर यकीन किया और ये उसके लिए क्या गिना गया? रासबाजी। पालूस को यीशु मसीह पर यकीन करना पड़ा। पालूस पदेशी मसीही नहीं था। सो कोई भी पदेशी मसीही पैदा नहीं होता, इसलिए हमें एक दूसरे को अपने बच्चों को बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह राह और हक और जिंदगी है। वही जिंदगी है, वही राह है और वही हक है, कोई और नहीं। कोई और हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी करामात के काम करे, चाहे वो मुर्दों को भी जिंदा कर दे। याद रखें कि ये वो वक्त आ गया है और आएगा कि अजीब अजीब आप मोजज़ात देखेंगे, लोग अजीब अजीब काम करेंगे और आप कहेंगे कि लगता है कि यही मसीह है। इसलिए यीशु मसीह कहता है गुमराह ना हो जाना, गुमराह ना हो जाना, क्योंकि अखीर जमाना में ऐसा होगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है बताने की कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, खा वो मर भी जाए तब भी वो जिंदा रहेगा। ये आप सब की जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ पादरी साहब की, ना कि सिर्फ मुबशिर भाई की, बल्कि पूरी कलीसिया की, बेटियों की, बेटों की, बेटियों की, बेटों की, माओं की, बुजुर्गों की। एक दूसरे को बताने की जरूरत है कि अगर तुमने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो कबूल करने की जरूरत है। और कबूल करने का तरीका, अगर कोई पूछ ले खुदा यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा यीशु मसीह में खुदा की ये क्या है? हमेशा की जिंदगी, बख्शिश है। कोई पूछ लेता है तुमको फजल ही से ईमान के वसीला से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। सादा सा जवाब, यीशु मसीह पर ईमान लाओ। ईमान लाओगे तो उस जहन्नम की आग से बचोगे, ईमान लाओगे तो उस दोजख से बचोगे, ईमान लाओगे तो खुदा से जो रिश्ता टूटा हुआ है वो जुड़ जाएगा। आए हम खुदा के जुड़ चुके। खुदा बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए जो धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। तेरे शुक्रगुजार हैं तेरा कलाम हमें मलामत करता है, हुक्म देता है, अभारता है, हमें मौका देता है कि जाएं और सब कौमों तक तेरी मनादी करें। तो हमारी जिंदगी खुदावंद तेरी मनादी करने का वसीला बने। हमारा बैठना, उठना, बोलना, चालना खुदावंद खुदा तुझे जाहिर करने वाला बने। सो आए हुए तमाम बुजुर्गों को, माओं को, बहनों को, बच्चों को, भाइयों को खुदावंद खुदा बड़ी बरकत दे और तेरा नाम उस पर जलाल पाए। और आज का कलाम हम बुरे नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।